ओम शांति। तो आज हम सब ने सुनते आए हैं, कभी हाथी के लिए भी कहा जाता है, कभी ऊंट के लिए भी कहा जाता है। ऊंट निकल गया, ऊंट का पूंछ अटक गया, हाथी निकल गया है ना, उसका पूंछ अटक गया। तो इसका अभावार्थ ज्ञान में क्या हो सकता है? इसका जो युक्ति लोगों ने आज क्यों बनाए हैं, और इसका मान्यता कालांतर से चलता आया है दुनिया में, हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में ज्यादा से ज्यादा ऐसे बोल सुनने में आता है। क्योंकि कोई भी बड़ा काम होता है वो तो सबकी नजर में होता है, सबकी निगाह में होता है, और सभी उमंग उत्साह से यह काम करते हैं। तो एक बार में वो काम बड़ा काम हो जाता है, लेकिन उसके पीछे जो भी काम रह जाता है, जो कार्य रह जाता है, उसके लिए कहा जाता है कि पूंछ अटक गया है, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है, जिसके कारण से उसको निभाने के लिए पूरे जीवन लगानी पड़ती है, पूरे जीवन देना पड़ता है। जैसे कि कभी कदम सबने देखा है, बड़ा काम हो जाता है, लंचिंग की जाती है, उसके बाद में और काम बढ़ते जाते हैं, और उसके पीछे कोई अटेंशन देता ही नहीं। और जो लोगों ने उम्मीद रखा होता है कि यह काम अगर यह हो जाता है तो सभी को कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाते हैं, जैसे कि सेंटर में जैसे कि बिल्डिंग बनाया गया, उसको छत डाल दिया गया, तो उस समय सब मिल करके उसको जोर से में हिस्से लगा लेते हैं तो बड़ा काम हो जाता है। लेकिन उसके पीछे जो रिपेयरिंग का काम रहता है, फिनिशिंग का काम रहता है, जैसे कि छत डाला हुआ, कहते हैं कि 10 साल हो गया है, फिनिशिंग नहीं हो पाया है क्योंकि उस समय सभी का उमंग उत्साह था कि अभी छत डालना है, अपना सेंटर बन रहा है, सबने जोर से में हिस्से लगा करके उमंग उत्साह से, खुशी से, जितना अपना साथ में था, अपने पास में था, उसको सफल कर लिया गया। उसके पीछे धीरे 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 वो काम होते जाता है, और कराने वाले और करने वाले भी होते हैं, कभी तो इतना लंबा खींचा जाता है कि वो रह जाता है। और इसलिए इसके लिए कहा जाता है कि यह ऐसी बातें हम सुनते हैं। जैसे हम भी बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हाथी तो निकल गया है, जैसे कि मोटे रूप से हमने जान लिया कि ऊंट, जैसे कि ऊंट निकल गया, उसके बाद में अभी उस स्वभाव संस्कार जो आदत की बातें होते हैं, पहले तो बाबा का बच्चा बनना माना ऊंट निकल गया है उसके बाद में अब शुरू होता है। मोटे रूप से तो हमने स्वभाव को जाना, संस्कार को जाना, जैसे काम करो लोभ अहंकार, उसी पर साप्ताहिक कोष में आ जाता है, और उसको निभाने के लिए और उसको ठीक करने के लिए और जो संपन्नता अथवा संपूर्णता तक पहुंचने के लिए पूरे जीवन लगानी पड़ती है। तो कभी कदा तो हम सब बाबा के बच्चे बन गए, बाबा के हो गए, उस समय खुशी भी होती है, उमंग उत्साह भी होती है। तो जन्म जन्म के हम सब ने किए गए भगवान के लिए जो कुर्बानी मेहरबानी और जो त्याग तपस्या साधना 63 जन्म का जो भक्ति का फल और बाबा का जो ताकत, बाबा की जो एनर्जी हम सबको उस समय इतना इजी कर देता है कि ये ज्ञान में चलना, जैसे कि 1.5 साल 2 साल तो हम जैसे कि उछल मारते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि सूक्ष्म संस्कार भी क्या होते हैं और वो कैसे हमारे ऊपर अटैक करता है, वो पता ही नहीं होता है। तो उसी के बहाने कभी कदा तो हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े जजमेंट कर लेते हैं कि अभी तो मुझे समर्पित होके रहना है, मधुबन में रहना है, बाबा का सेवा में ही जीवन निकालनी है। बाद में जाकर के फिर उस जब स्वभाव संस्कार की जो अटैक शुरू हो जाता है, रहे हुए पूंछ जो अटक गई तो वो पूंछ फिर कुछ न कुछ करने लग जाता है। क्या क्यों कैसे की पूंछ लग जाते है। इसलिए इंसान के लिए तो दिखाते मुझ का ज्यादा महत्व होता है, मुझ ही, लेकिन जानवर के लिए पूंछ का ज्यादा महत्व दिया है। क्योंकि पूंछ जब पशु प्राणी के भी अगर कट जाते हैं ना, उसका आधा वैल्यू कम हो जाता है। आधा वैल्यू कम हो जाता है और वही उसका सब कुछ होता है। हमारे इंसान के तो हाथ पांव सब कुछ होते हैं, सहयोगी भी होते हैं, लेकिन जैसे कि प्राणियों के लिए तो जानवर के लिए तो पूंछे होता है। जैसे मक्खियां बैठते हैं, कोई भी प्राणी पीछे बैठते हैं तो हिलाती रहती है चमर की तरह, उसको हटाने का काम करती है। जैसे कि हम बचपन में भैंस चराने जाते थे तो भैंस इतना अभी थोड़ा डरती होता है, ऐसे हिल में बैठ जाता है, कचड़ में बैठ जाता है, गोबर के साथ में बैठ जाती है, और सफेद कपड़े के साथ में तो भैंसी चराने कोई जा ही नहीं पाता। वो ठप्पा लगाती रहती है आगे पीछे से, तो इसीलिए पूंछ हलाती रहती है। तो इसका मतलब यही है, पूंछ एक प्रकार से देखा जाए तो अहंकार की निशानी भी है। क्योंकि हनुमान ने भी पूंछ के द्वारा ही पूरा लंका जला दिया था। उसको बांध करके जो पकड़ रहे थे तो उसने वहां जला करके फिर आकर के सागर में छलांग लगा के अपने आप को बचाया था। इसी रीति से हम सब भी अब रही हुई जो स्वभाव है, संस्कार है, बारीकी से जब तक हम उसको झांकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर हमारे ऊपर जो आंतरिक रूप से जो अटैक करता है वो बहुत संवेदनशील होता है और हम समझ ही नहीं पाते कई बार तो इस सारी बातों को। इसीलिए आज तक हम सब ने देखा है बाबा के घर में कितने सारे बच्चे आते हैं और कितने सारे बच्चे होलसेल में बन जाते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन बाद में जाकर के जो स्वभाव संस्कार की जो बातें आती है उसमें बहुत सारे लोग छांटनी हो जाते हैं और बाबा के हाथ और साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो बड़े बड़े लड़ाई तो जीता जा सकता है, लेकिन जो गोरिल्ला लड़ाई होती है, छंद युद्ध होता है, गुप्त रूप से छिपे छिपे करने वाली जो लड़ाइयां होती है वो भारी होता है और जो कोई उसको समझ ही नहीं पाते। जैसे कि कोई देश किसी देश पर अटैक करता है तो सब प्रकार के उसने अपना आर्मी बनाए होते हैं, तीनों प्रकार के जो होते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उसके द्वारा अटैक करके लड़ाई तो जीती जा सकती है, लेकिन जो छंद युद्ध जो आतंकवादियों के द्वारा बीच बीच में जो अटैक होता है उससे वो बड़ी लड़ाई में जितने आर्मी जो गए है ना, लाल नहीं हुए थे, घायल नहीं हुए थे, मरे नहीं थे, इससे बहुत सारे लोग मरते रहते और पूरे जीवन भर उनके देखभाल के लिए हजारों लाखों आर्मी पुलिस को इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये गुप्त रूप से होने वाली जो लड़ाई होती है वो समझ से भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आज तक हमने बहुत सारे भाई बहनों को आते हुए और जाते हुए देखा है। तो इसके पीछे छिपा हुआ यही बातें हैं कि सूक्ष्म संस्कारों को न समझ पाना, और जितने भी गए उस संस्कार के कारण ही गए हैं सब, क्योंकि सभी के पास में अपने रिजर्व संस्कार होते हैं, छिपे हुए संस्कार होते हैं। तो रिजर्वेशन करके जो संस्कार लेके आए हैं वही संस्कार जब मौका मिलता है, परिस्थिति बदलती है, बातें बदलता है, तो उस समय वो संस्कार उग्र रूप से हावी हो जाता है। क्योंकि बड़ों की नजरों में, हमारे जो बड़े आगे हुए हैं उनकी नजर में, उनके आगे पीछे होते हैं तो संस्कार छिपे छिपे रहते हैं, लेकिन ऐसा मौका जब मिल जाता है तो ज्वालामुखी जैसे विस्फोट हो जाता है, तो जिसके कारण से अपने को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस कारण उसी समय फिर हमारा जो जजमेंट होता है, हमारा सोच होते हैं और हम उस समय घायल हो जाते हैं। जैसे कि स्तन से अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो कभी भी वो ठीक हो जाता है और उस रूट में वो आ ही जाता है। लेकिन मन से और बुद्धि से जो व्यक्ति घायल हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, हरेश खा जाता है, तो कभी सफलता पा नहीं सकता है और उसके लिए वो संघर्ष कर ही नहीं सकता है। इसीलिए मन से कोई हार जाता है तो फिर उसकी यात्रा रुक जाती है। इसीलिए सूक्ष्म संस्कार जो हमारे सबके पास अभी भी है, वो तो लास्ट घड़ी तक भी अटैक करती रहेगी। जैसे हम रुस्तम होते जाएंगे, उसका रूप और रंगत और रूप बदलते जाएंगे। बाबा ने तो बोला है कि अंतिम घड़ी तक भी पेपर तुम्हें नहीं छोड़ेगी, अंतिम सेकंड तक भी संस्कार हमारे ऊपर अटैक करता रहेगा। क्योंकि बाबा ने भी बोला है कि अगर मेरे बच्चे हैं तो बाबा को अगर दिल में रखा है, मन में रखा है, हर पल हर घड़ी बाबा के साथ में होंगे तो स्वभाव संस्कार कब पिघल जाते हैं मम की तरह वो पता ही नहीं चलता है। लेकिन उतार चढ़ाव वाला जो हमारा यात्रा होगा, याद इच्छा हुए तो याद किया, नहीं हुए तो याद नहीं किया। जैसे हल्के फुल्के होकर के चलते हैं, जैसे कि पुरुषार्थ में अलबेले हो जाते हैं, पुरुषार्थ के प्रति कोई जागरूकता नहीं है, तो फिर उस समय संस्कार को हावी होने का मौका मिल जाता है। जैसे दो तीन दिन पहले भी डॉक्टर सचिन सुना रहे थे कि जो बीमारी होती है उसको साल भर का डोज देना पड़ता है कंटिन्यू। अगर एक दिन भी डोज छोड़ देते हैं तो फिर पीछे से रिपीट करना पड़ता है। तो अगर छूट गई तो जैसे कि टीबी वालों को, अगर टीबी का बीमारी है लेकिन ऑल बेले में आकर के उसने दवाई नहीं खाया, दो चार दिन छोड़ दिया तो ड्रग रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं वो बीमारी बढ़ जाती है। तो फिर उसको रिपीट करना और वो जो वायरस और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। इसी रीति से हम सब भी पुरुषार्थ के मार्ग पर पाव रखे। हम सब ने हम सबको आगे बढ़ना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, श्रेष्ठ बनाना, संपूर्णता के मंजिल तक जाना हम सबका लक्ष्य है। तो संगठन में होकर के हम चलते हैं तो हम सबको संगठन में अच्छा तो रहता है, लेकिन जो पुरुषार्थ के बाद भी जो संकल्प विकल्प की जो वार होते हैं वो सूक्ष्म रूप से होते हैं। और जो जब हम सूक्ष्म रूप से होने वाली जो आक्रमण है, जैसे कि संस्कार तो अंदर में जाके फिट हुआ है, अंदर में जाके बैठा हुआ है, और वो किस समय अटैक करता है वो संकल्प और विकल्प के रूप से अटैक करता है। तो इस कारण से वो अटैक जो हो रहा है उसको अगर समझ नहीं सकते हैं तो लाइफ में कभी भी चेंजेस नहीं आ सकती है। और परिवर्तन के हम उसका सुख अनुभव नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन का सुख का अनुभव करने के लिए चेकर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन के अंदर जो चलने वाली जो संकल्प को जब तक हम पता नहीं कर पाएंगे कि ये संकल्प कहाँ से चल रहे हैं, किस बातों के कारण से चल रहे हैं, कहाँ छिपे हुए थे ये सब, क्योंकि अंदर में संकल्प जो बंकर बना के बैठे हुए जो गुफाओं में कंदराओं में, तो ऐसी बातें कभी न कभी निकलते रहते हैं। तो संकल्प के प्रति अगर हम संपूर्ण रूप से चेकिंग करते हैं तो हमको पता चलेगा कि ये यहाँ से आ रही है, इस कारण से ये विचार चल रहे हैं, ये विचार बीच बीच में भी आते रहते थे, उस समय तो हम सोए हुए थे, अभी जागृति आने के बाद पता चल रहा है कि ये संकल्प इस समय क्यों आया, किस कारण से आया और क्या करने के लिए आया है। अगर इसको अगर हम फ्री छोड़ देंगे तो इसे होने वाली क्या नुकसान हो सकती है और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में भी अगर हम जागृति के रूप से जागे हुए मूड में अगर इस हिसाब से इसको चेक करना चाहे तो दोबारा उस प्रकार के आक्रमण से हम बच सकते हैं। जब तक संकल्प के ऊपर निगरानी नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा। कितना भी कुछ कर लेंगे और मन से सदा हम हारे हुए होते हैं, इसीलिए हर दिन हमें नई नई अनुभव के लिए, नई नई अनुभूति के लिए, सदा नूतन बातों को जानने के लिए, अनुभव को बढ़ाने के लिए हमको सदा कोई न कोई नई बातों को सर्च करना, नई बातों के प्रति जागरूक होना और उसको प्रैक्टिकल में उतार के देने के लिए हम मन को कितना काम दे सकते हैं और मन से कितना काम ले सकते हैं और मन को कितना समय में बिजी रख सकता हूँ। इस तरीके से मन के प्रति सबसे ज्यादा अगर अटेंशन है तो हम इस सारी बातों से अपने को इस अवस्था तक, इस स्थिति तक पहुंचा करके उसका रसपान कर सकते हैं, उसका अमृत पान कर सकते हैं और जीवन सदा ही खिला खिला होगा, आनंदित होगा और हर दिन नया चीज मिलता है तो मन को भी अच्छा लगता है और आत्मा भी इसमें खुश हो जाती है। इसीलिए मन को कितना समय हम काम लगा सकते हैं, इसीलिए मन को काम लगाने के लिए ही बाबा ने हम सबको, ये मन का ही रूहानी यात्रा है। आज भी बाबा ने जो स्लोगन में बताए हैं, रूहानी मौज में वही रह सकता है दाता बरदाता विदाता को जिसने खुश किया है, वही रूहानी मौज में रह सकता है। तो इसीलिए सारा खेल तो मन के ऊपर ही है, लेकिन कभी कदा अनुभव में ऐसा भी हमने अनुभव किया है कि आज हम सब मन बुद्धि और संस्कार को काम नहीं लगाते हैं और उसके ऊपर हम इंटरफेयर करते रहते, उसको काम लगाने की कला अभी तक हमारे अंदर नहीं आई है। मन को कैसे काम लगा के साक्षी हो जाने चाहिए, बुद्धि को कौन से चिंतन में लगा के बिजी करना चाहिए और संस्कार को उससे होने वाले आक्रमण से हम कैसे बीच में रह सकते हैं। जैसे कहते हैं अवचेतन मन और चेतन मन के बीच में होकर के हम साक्षी होकर के उधर से आने वाले जो संकल्प बीच में होकर के, जैसे चेतन मन तक आने वाले के बीच में होकर के साक्षी होकर के अगर हम मन को गाइड करते हैं, वहां से तो कुछ न कुछ आएगा और चेतन मन को देगा वो, तो बीच में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये बीच में खड़ा होकर के देखने वाली जो अवस्था है, जो स्थिति है, उसको ही साक्षी दृष्टा की स्थिति कहा जाता है। उसने तो सूक्ष्म मन से तो यहाँ पर अटैक आ ही जाएगा, अगर हम अलबेले होंगे, सुस्त होंगे और उस सारी बातों की जानकारी नहीं होगी तो अवचेतन से आए हुए, चित्त से आई हुई जो बातें हैं तो डायरेक्ट चेतन मन में आएगा और उसका इफेक्ट हमारे तन में आ जाएगा, हमारे आंखों में आ जाएगा, दृष्टि में आएगा, वृत्ति में आएगा और स्मृति में उसका इफेक्ट आ जाएगा और उसका इफेक्ट सारा दिन भर हमारे अंदर घूमती रहती है। और बीच बीच में हम इस प्रकार के अपने कुछ जैसे कि चैनल नहीं बदल सकते, उसी चैनल के हम मजबूर हो जाते, वही विचार वही संकल्प हमारे ऊपर हावी होते रहते, इसीलिए हमारा पूंछ वही अटक जाता है। इसीलिए बड़ा काम तो सहज रूप से हुआ, हम लोग ने वही मान लिया था, लेकिन पूंछ जब अटक जाता है तो कुछ न कुछ उल्टे पलटे विचार संकल्प चलते रहते हैं। इसीलिए हम सब जितना ज्यादा अपने ऊपर, अपने लिए, अपने हित के लिए ही हम यहाँ पर आए, अपना भला हो, क्योंकि अपना ही हमारा स्वभाव संस्कार ठीक नहीं कर पाए हम दूसरों को मदद ही नहीं कर सकते। अपने स्वभाव संस्कार रूपी पहाड़ को छेनी और हथौड़े से दिन रात तोड़ते रहेंगे तो दूसरों को हम मदद नहीं कर सकेंगे, दूसरों को सही पहुंचा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हम अपने में ही बिजी है। जब हम अपना काम खत्म करेंगे तभी हम दूसरों को मदद दे सकेंगे, दूसरों को भी सुख दे सकेंगे, अपने अनुभव और अनुभूति के द्वारा दूसरों को भी सुख पहुंचा सकेंगे। इसीलिए हम जितना भरपूर होंगे, जितना हम अनुभवी मूर्त होंगे, अनुभव से लैस होंगे, तभी हम दूसरों को भी निर्भीक और निर्भय होकर के इस सारी बातों को शेयर कर सकेंगे। अपने अंदर अनुभव ही नहीं और दूसरों को सुनाएंगे तो मेरे ही मन कहेगा तुम तो कर ही नहीं पा रहे, दूसरों को क्या सुनाएगा। हमारा मन ही बीच में तान बढ़ा लेगा। इसीलिए अंदर की आवाज ये हो कि पहले मैंने ही सब चीजों का अनुभव मन जीत बनना पड़ेगा, अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा, अनेक अनुभूतियों से अपने को सजाया हुआ होनी चाहिए, तो फिर हम किसी को भी सुनाते हैं तो उसका इफेक्ट सीधा ही उसके मन पर, उसको बाबा हमारे द्वारा क्या देने चाहते हैं, उसको उस समय किस चीज की आवश्यकता है, और उसको उस घड़ी ये चीज अगर मिल जाता है तो उसके जीवन में जैसे कि टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। कोई कोई ऐसे वचन ऐसी बातें होती है हमको पता नहीं चलता है, लेकिन उसको वो चीज मिल जाता है, क्योंकि बाबा हमारे द्वारा उस आत्मा को उस प्रकार की चीजें दे करके उसके भी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए बाबा मदद करते रहते। इसीलिए सब मसला तो हमारे पास होने ही चाहिए पहले से, और किस समय कौन सी चीज किसको चाहिए, बुद्धि जब बाबा के ऊपर हम समर्पित कर देते हैं, मन भी समर्पित कर देते हैं, स्मृतियों को भी बाबा के ऊपर समर्पित कर देते हैं, तो उस खजाने से क्या निकाल के बाबा किसको क्या देने चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल में इस बार जब हम गांव गए थे तो इसका अच्छा अनुभव हमने किया। अपने को पता ही नहीं होता था कि क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर हवाला करने के बाद में बाबा इस तरीके से सबको इस प्रकार के अनुभव कराते थे। बाद में हमको पता नहीं चल रहा था कि, फिर उसके बाद में संकल्प भी नहीं चल रहा था कि ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि कराने वाला वो बैठा है तो हम बीच में बुद्धि चलाने वाले कौन है, बीच में अहंकार लाने वाले कौन है। बाबा सब तो बाबा के बच्चे हैं, अब हम भी बाबा के बच्चे हैं, हमारे द्वारा बाबा उसको क्या देने चाहते हैं वो बाबा को पता है। तो इस तरीके से जहां भी हम इस प्रकार के संकल्प रखे, जो भी बातें सुनाते थे कराते थे, तो उसमें इस प्रकार की बातें सबको मिलता हुआ अनुभव हुआ। इसीलिए सबसे पहले आज की आवश्यकता है कि हमने कई जगह शेयर भी किया है कि क्या योग के कई तरीके होते हैं, जो पहले 7 दिन पूरा होने के बाद में अपने को आत्मा समझ करके भगवान को याद करने की बातें तो सबको पता है। आज कोई 10वें साल से, कोई 15 साल से, कोई 20वें साल से उसी में लगे हुए हैं और नवीनता का अनुभव नहीं है। तो बाबा के बच्चे तो बन गए, ऊंट तो निकल गई, और फिर अब उसके बाद होने वाली जो परिवर्तन और जो चेंजेस की जो आवश्यकता है, आज एकदम धीमा गति से गाड़ी चल रही है। जहां भी देखा, जहां भी हम गए, जितनों से भी हम मिले, ये बातों का अनुभव हुआ कि एक ही बातें हमने पकड़ के रखा है, लगे तो लगे ही, नहीं लगे तो भी क्या है। तो उसके पीछे आने वाला जो झुटका है, जो अलबेलापन की बातें, वो संकल्प हम सबको बिजी करके रखा हुआ है, और जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, जो नवीनता होनी चाहिए, जो परिवर्तन दिखनी चाहिए, अपने को भी होते हुए अनुभव होने चाहिए, दूसरों को भी दिखने चाहिए, ये तो बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हम सबको संपूर्ण रूप से जो मन के ऊपर आने वाली जो बातें हैं, उसके लिए सदाई हमको एक तो परोपकारी बन के रहना है। परोपकारी बनना भी आज छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जिसने 100 उपकार किया होगा वही परोपकार कर सकता है, क्योंकि 100 उपकार करे बिना परोपकार हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से कई सारी बातों के प्रति हम जितना ज्यादा गहराई में जाकर के हमारे अंदर ही छिपे हुए बातों को बाहर निकलना है आज। क्योंकि हम वो चीज करते हैं, कभी कभार हम ऐसा लगता है कि भरी हुई टैंकी में जो पानी जितना भी हम भर लेंगे कभी न कभी तो खाली होगा ही। लेकिन हम खुद ही अपने कुआं बना ले तो कुएं से कितना भी पानी निकालते रहेंगे, पानी का टेस्ट और बढ़ेगा और पानी कभी फिनिश नहीं होगा। धारावाहिक रूप से अपने विचार, अपने संकल्प, अपने चिंतन अपने जीवन में काम आती रहेगी। इसीलिए हम कभी कदा तो उस कुएं के अंदर, कुएं की गहराई तक पहुंच नहीं पाते, एक कुआ खोल लिया फिर उसके बाद में उससे सफलता नहीं मिली, दूसरे कुएं खोदने चल पड़े, करते करते 10-10 कुएं खोद लिए और बारिश का पानी इकट्ठा होकर के वहां तो मच्छर पैदा हो जाते। इसीलिए एक ही ऐसा कुआ बनाया जाए जो उससे हमारे उन्नति भी हो, प्रगति भी हो, जहाँ हमें सुख भी मिले और हर दिन नए नए विचार का जन्म हो, नए नए चिंतन हो, यह हमारे लिए अभी बहुत ज्यादा आवश्यक है। नहीं तो परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा जितना भी करेंगे। इसीलिए वही शब्द जो लोकायुक्ति बन गया है कि बड़ा काम तो हो गया है और छोटे छोटे काम रह गए हैं, तो छोटे छोटे काम के लिए पूरे लाइफ निकल जाती है, फिर भी संतुष्टता हमको नहीं मिलता है। तो कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, 18 साल 20 साल पढ़ने के बाद में जैसे उसने सब्जेक्ट को सिलेक्शन करके कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो 18-20 साल में कोई व्यक्ति पढ़ लेकर के गांव में आते हैं तो डॉक्टर साहब नमस्ते करके सभी नमस्ते करते हैं, इंजीनियर साहब करके सब नमस्ते करते हैं। लेकिन हम लोग ज्ञान में चलते चलते किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल हो गया, किसी का 40 साल हो गया, लेकिन आज तक हमने ये सुना ही नहीं कि देवता साहब नमस्ते बोल के, देवी साहब नमस्ते बोल के किसी के मुख से हमने सुना ही नहीं, क्योंकि हमारी जो कमी कमजोरी जो रही हुई है ना उसके कारण से तो कभी सुना ही नहीं हम लोगों ने। इसलिए इतने साल से लागे रहने के बाद में भी पढ़ाई चालू है, सभी देवता बनने जा रहे हैं और किसको कौन सम्मान देगा क्योंकि देंगे तो वो मेरे से आगे न बढ़ जाए, दूसरा टेंशन यहाँ हो जाएगी इसीलिए सभी इस बातों को। फिर भी हम गांव में जाते हैं, सब बाबा के बच्चे बने नहीं होते, उनको कई सारी बातें हम लोगों से अभी दिखना शुरू हो गया है, ये अहंकार नहीं दिख रहा है और उन लोग मानना भी शुरू किए हैं। क्योंकि पहले पहले जब हम अपने गांव में होते थे तो ये देवी देवताओं की पूजा भी उतना ज्यादा नहीं होता था, जैसे नवरात्रि ये जो अभी पहले कोई सिस्टम ही नहीं थी। अभी हर गांव में, हर टोल में, हर गली और हर मोहल्ले में लोगों ने इस प्रकार की जो आराधना पूजा पाठ नवरात्रि के लिए इतना मेहनत करके करते हुए देखा कि हम हैरान हो गए। तो इसका मतलब हम सबको अब पूरे रेडी होकर के ना पर्दे के पीछे हम रेडी होके रहना पड़ेगा नहीं तो पर्दे के पीछे देखा जाता है पर्दे के पीछे देखा जाता है कि अभी तक हम सब प्रकार के श्रृंगार में लगे हुए हैं, अचानक पर्दा खुल गया तो उन लोग भी सोचे हम ही लोग जैसे ही भी श्रृंगार पिटार में लगे हुए उनको इस प्रकार की है ना बातें दिखाई न पड़े। हम जो काम करते हैं लगन से करें, मनोयोग से करें और उसमें हम स्पेशलिस्ट बन जाए जो भी एक सब्जेक्ट में, तो उसके बाद में और सारी चीजें तो नेचुरल आती जाएगी। कि कोई तो कभी कदा क्या होता है कि 10 चीजें पकड़ने जाते हैं, 9 पकड़ पाते हैं, जो पकड़ा वो भी छूट जाता है इसीलिए जो चीज एक चीज में अगर हम बन जाएंगे तो सारी चीजें नेचुरल आ जाएगी। तो सबके प्रति, सबके अंदर ऐसे गुण तो सबके अंदर है, अनादि गुण है, आदि गुण है, और बाबा ने यहाँ संगम जिस गुण को देख करके हमें सिलेक्शन किया है। कभी कभी यह भी होता है कि वो गुण मेरे क्या है, मेरी खूबी क्या है, मेरी खासियत क्या है, वो भी किसी किसी को अभी तक भी हमको पता नहीं होता, सब किसी को पता ही नहीं होता। और उसी गुण को अगर हम पकड़ लिया कि बाबा ने मुझे किस गुण के कारण से और किस विशेषता के कारण से करोड़ों आत्माओं के बीच में मुझे बाबा ने सिलेक्शन किया है, उसके बारे में भी हमें कभी कभी चिंतन करके हमको पता होना चाहिए कि बाबा ने मेरे को इसी कारण से चुना होगा और उसको काम में लगाने के लिए, उसको ज्यादा विकसित करने के लिए और उससे हम कितना फायदा ले सकते हैं उसके करीब और समीप होकर के उस चीज को हम जैसे जीवन में उतार दें। एक ही चीज को उतारेंगे सब हो जाएगा। जैसे हमने जितना बैठे हैं एक एक उतारेंगे तो यहाँ तो 36-40 लोग हम बैठे हैं, एक एक गुण एक आपस को शेयर करते रहेंगे तो वो गुण भी हमारे जीवन में नेचुरल आ जाएगी। इसलिए जो बातें हम सबने सुनते आए हैं तो उसका मतलब यही है कि बड़ा काम तो हो ही जाता है, एक झोंक में हो जाता है। दादियों को बाबा ने कि आगे लिए दिवाली नहीं आएगा करके इतना बैराग्य दिला करके इकट्ठे किए थे, आज दादियों को पढ़ते पढ़ते 81 साल हो गया फिर भी गाड़ी चल रही है। तो पीछे वाला जो पहुंच होता है वो सबसे सटीक और सबसे लंबा समय उसको चेक करने के लिए, झांकने के लिए और उसको उजागर करने के लिए और उससे कितना जीत पाए और कितना हार हुई और कितना विजयी बनना बाकी है, इस प्रकार की समीक्षा अगर हमारे अंदर जो करते रहेंगे तो आगे के लिए हमको सहज होगा और हम जिस मंजिल के लिए चल पड़े हैं उसको हम पूरा करके ही रहेंगे। तो जैसे कि बीच में जोड़ देते हैं, तो हम सबको सहयोग देने के लिए जैसे कि विशाल हृदय की जरूरत है, आज बड़ी दिल की जरूरत है, क्योंकि आज दिल कभी न कभी किसी न किसी कारण से संकीर्ण हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है, कोई न कोई संस्कार बीच में अटैक करता ही है और हम फिर उसको चेक ही नहीं कर पाते। और वो जैसे कि हम किसी को कुछ देना चाहते हैं लेकिन हम खुद ही उसके उलझन में उलझे हुए होते हैं तो किसी को दे भी नहीं सकते। इसीलिए कथनी और करनी भी समान होनी चाहिए। कथनी और करनी समान तब होता है जब हम अंदर से भरपूर होंगे। तो अंदर से जो भरने की जो मेथड है हम सब जानते तो है, लेकिन एक जगह हमने काउंट किया था कि बाबा को 15 प्रकार से याद किया जा सकता है। तो हैरान हो गए कि हम तो अभी 20 साल हो गए एक ही तरीके से याद करते आए थे। तो काउंटिंग करके जो बताए गए तो उनको इतना खुशी हुई कि इतने सारे विधि भी हो सकते हैं क्या। तो प्रैक्टिकल में कहीं ने करके भी दिखाए। तो जैसे कि शुरू शुरू में तो हम आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे हमारी स्टेज आगे बढ़ती है तो ये जो बाबा से रूहरियान की जो बातें बाबा बताते हैं ना, ये इतना सटीक है और वो सीधा ही हमारे अंतर मन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। क्योंकि बाबा को तो पता है कि मेरे बच्चे एबीसीडी न जानने से लेकर के पीएचडी तक पहुंचे हुए बच्चे, और ऐसे बच्चों को मैं जो दुनिया के जो फिलासफर हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रिसर्च करने वाले हुए हैं, जैसे कि उस दिन रहस्य के बारे में जो वीडियो दिखाए गए थे, इस प्रकार की बातें संसार की सभी आत्माएं बाबा की बातें सुने समझे और सबके जीवन में लागू हो, इसीलिए बाबा तो अति सूक्ष्म बातें और सरल भाषा में सुनाते। तो ये जो अपने ऊपर जो रूहरियान की जो बातें होती है, बाबा के लिए रूहरियान की बातें होती है, उससे हमारे बड़े बड़े संस्कार चेंज हो जाते हैं। क्योंकि इस रूहरियान के कारण से हमारे जो चित्त में जो फाइल बना हुआ है उस फाइल को चेंज करने के लिए तर्क की जरूरत पड़ती है, लॉजिक की जरूरत पड़ती है। तो ये रूहरियान में वो चीज उसको मिल जाता है और हमारा संस्कार नेचुरल चेंज हो जाता है। तो जैसे कि बाबा रूहरियान करो, अपने आप से भी बोलते हैं, बाबा से भी रूहरियान करो, तो ये दूसरा मेथड हो गया। ये तीसरा मेथड होगा कि मैं अपने को फरिश्ता समझ करके और बाबा को भी फरिश्ता रूप में देख करके ये बॉडी से डिटैच हो जाए, और जैसे कि हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, अंतरिक्ष में जैसे कि भ्रमण करते हैं, ग्लोब के ऊपर बैठ करके सारी दुनिया को सकाह देते हैं, तो बॉडी से जब तक डिटैच नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता है। तो बॉडी से डिटैच होना, जैसे कि अंतर्भाग शरीर से विश्व भ्रमण करना, संसार की जो आत्माएं जो पुकार रही है, जो आह्वान कर रही है, तो बाबा को आगे रख करके शुभ संकल्प देना, यह तो तीसरा चौथा मेथड यह हो सकता है। तो कभी कभी बिंदी समझ करके अपने को परम धाम में बाबा के साथ में कम्बाइंड होके रहना, निराकारी दुनिया की अनुभूति करना, और वहां से ही जैसे कि मेरा शरीर तो दुनिया में छूट चुका है, मैं यहाँ का ही हो गया हूँ, अब मुझे फिर सतयुग में जाना है, मेरा संपूर्ण रूप से दुनिया का हिसाब किताब समाप्त हो गया है, तो उस समय बहुत मजा आता है। देह की स्मृति ही खत्म हो जाती है उस समय। तो इस तरीके से कभी कभी साक्षी होकर के देखे कि अपना पार्ट को भी देखे, दूसरों के पार्ट को भी देखे, ये भी योग में कितना काम आ जाता है, कभी कभी तो बहुत मजा आता है इसमें। तो इस तरीके से जितना ज्यादा तरीके अपनाते हैं, जैसे कभी कदा हमने देखा है जो करोड़पति बाप के बेटे होते हैं उनके घर में 10-10 कारें होते हैं, तो कभी इस कलर के कार में, कभी उस कलर के कार में, कभी इस कंपनी के कार में, कभी उस कंपनी के कार में, तो बाबा ने भी हमको इतना तर सोमान दिए हैं, वरदान दिए हैं, इतने सारे तरीके दे, तो कभी हरेक दिन देश बदल दे, है ना, तरीका बदल के करते हैं, तो उसमें कभी ऐसा खाली दिन नहीं जाएगा कि आज मेरा योग ठीक से नहीं लगा, आज तो कोई अनुभूति नहीं हुई, आज तो ऐसे दिन निकल गए, इस प्रकार के विचार नहीं चलेंगे। हर दिन भरपूर होके निकलेंगे। शुरू शुरू के दिन में योग करने बैठते थे, योग से निकलने के बाद में जैसे कि 40 टन का लोड उठा के मैं चल रहा हूँ, चेहरा देखने से भी भारी लगता था, किसी को देखने से भी गुस्सा आ जाता था, लेकिन अभी बहुत खुशी होती है सबको देख करके, सबसे नई मुलाकात करके, वो जो भारीपन जो कब जाकर खटे पकड़ू जैसा होता था कभी कभी, तो जैसे संघर्ष कर रहे हैं, भयंकर लड़ाई हो रही है अंदर से, लेकिन उसके बाद फिर वो संस्कार बन गई है ग्रुप के कारण से, हम सबको जाके खटिया की स्मृति ही नहीं आती। संस्कार भी मजबूत होते गए, अनुभूति भी बढ़ती गई, अनुभव से बहुत सारी बातें मिलता भी गया, तो इसके कारण से अगाड़ी आगे के लिए भी इस प्रकार की अनुभूति बढ़ते जाएंगे, तो दूसरे देखते हैं तो उनको भी खुशी होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो ओरा जो वाइब्रेशन निकल रही होती है ना, पवित्रता के कारण से और अच्छे विचारों के कारण से, उसका ओरा बढ़ती जा रही, परसेंटेज और उसका घेरा भी बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए जैसे जैसे उसका परसेंटेज और वो पावरफुल होता जाएगा, आगे जाकर के इस प्रकार के अनुभव दूसरे भी करेंगे। इसीलिए जितने तरीके अपना करके हम अपने को इस स्वरूप में अपने को बनाने चाहे, इस स्थिति में हम अपने को देखने चाहे, ये अभी का समय है, क्योंकि ये वक्त जा रहा है, वापस आने वाला नहीं है, जितना करना होगा अभी हमको करना है, क्योंकि बाबा का प्रोग्राम अटेंड करने के हिसाब से मैं 7 तारीख पहुंचने के लिए निकला था, थोड़ा हमारा ट्रेन ही कैंसिल हो गया था, तो मैंने सोचा था बाबा को अभी ट्रेन में मिलेंगे करके, ट्रेन में मिलते हुए आए, बहुत अच्छा अनुभव हो गया, यहाँ के पूछा तो बाबा ही नहीं आए। तो हमारे पास आए तो बाबा चाहे ऊपर ही रहे चाहे आए, है ना, अभी तो हमको बाबा ने जो फ्रीक्वेंसी जो ट्यून मैच करने की जो मेथड बताए, तो हमको कहीं रहे भी उसका अनुभव होता ही है, और उससे बाबा से शांति मन में जाके जो मिल के आते हैं अमृत वेला, उससे भी बढ़िया अनुभव होता है। इसीलिए ये मन में नहीं है कि बाबा नहीं आए, बाबा हमारा ही हमारे साथ है, ये आने और जाने की बात ही क्या है। इसलिए इस प्रकार के अनुभव हम सबको हो जाए, ये शुभ संकल्प सब तक पहुंच जाए, और हम भी इससे हर दिन परसेंटेज बढ़ते जाए, ये संकल्प और दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है, यही संकल्प मैंने भी अपने ऊपर भी रखा हूँ। ओम शांति।